तच्चम कहिज्यमानम् निश्चल भावेण गिण्णदे जूहि तमचीय भावे दिशया सोविय तच्चम वियाणी कहिज्यमानम् तच्चम। जो तत्व कहा जा रहा है उसको निश्चल भावेण जो गिण दे, निश्चल भाव से जो ग्रहण करता है, समझता है, तमची भावे दिशया और उसी की निरंतर भावना करता है कि कितना सुंदर तत्व का स्वरूप था, सोवीय तच्चम विजाणी, वही उस तत्व को विशिष्ट ज्ञान द्वारा जान सकता है, पहचान सकता है। जानकारी पहले प्राप्त हुई और ज्ञान बाद में हुआ, पर किसको हुआ ज्ञान? सबको नहीं होता। जानकारी प्राप्त करने के बाद जो बड़ी लगन के साथ, निश्चल भाव के साथ उसको स्वीकार करता है, उसको फिर उस तत्व का विशिष्ट ज्ञान होता है और ध्यान भी उसी को प्राप्त होता है। ध्यान सब लोग नहीं करते और सब लोग कर भी नहीं सकते, बहुत रुचिवंत लोग ही ध्यान में आगे बढ़ पाते हैं। और अगर ध्यान और ज्ञान में किसी की रुचि हो तो फिर उसके जीवन में पतन की संभावना नगण्य होती है। जिसकी रुचि इधर उधर होती है वो त्याग मार्ग पर आने के बाद भी कभी भटक सकता है, लेकिन जिसकी रुचि ज्ञान और ध्यान में होती है उसका संपर्क बहुत जुड़ा रहता है, मतलब निरंतर कनेक्शन रहता है उसका भगवान से और फिर जिनवाणी से, तो उसका पतन मुश्किल है। फिर इसके आगे एक बहुत सुंदर गाथा है, अथ युवत्यादीनाम कह को वशो नास्ति ति आवेदयति। अब स्त्री आदि जो संसार के विषय हैं, कौन इनके इनसे प्रभावित नहीं है, अर्थात सारी दुनिया तो इस जंजाल में उलझी हुई है। कथा कूर्ण वसु इथि जणी कसण मैणीन खंडियम माणम को इंदिये ही न जियो कूर्ण कसाई ही संतत्तो। प्रश्न किया आचार्यों ने, स्वामी कुमार कार्तिकेय मुनि ने प्रश्न किया, कौन वसु इत्थी जने, स्त्री जनों में कौन आकृष्ट नहीं है, कसन मैणेन खंडियम माणम, काम के द्वारा किसका अहंकार नष्ट नहीं किया गया है, अर्थात काम ने बड़े बड़ों को धूल दिखला दी, मिट्टी में मिला दिया। उत्तर पुराण में लिखा है कि रावण ने सीता के चरणों में प्रणाम किया है कि मैं तेरा दास हूं। जिस रावण के चरणों में तीन खंड के 16,000 राजा झुकते थे, वो पर स्त्री के चरणों में झुक गया, यानी काम ने उसके अहंकार को भी नष्ट कर दिया। और को इंद्रिय ही न जीव, इंद्रियों के द्वारा कौन पराजित नहीं हुआ, इंद्रियों ने सबको हरा दिया है। और कौन कसाई ही संतत्तो, और कषायों से संतप्त कौन नहीं हुआ है, पूरे प्रश्न है इसमें। अब इसकी टीका देखिए, कह संसारी जीव, ऐसा कौन संसारी जीव है जो स्त्री जने वशो न, स्त्री जन से वशवर्ती न जायते थी, न जो स्त्रियों के वशीभूत न हुआ हो ऐसा कौन है। कांता कनक चक्रेण भ्रामितम भुवनत्रयम् इति वचनात्, ऐसे वचन है कि कांता कनक चक्रेण, स्त्री और सुवर्ण इसके चक्र द्वारा भुवनत्रयम् भ्रामितम्, ये तीनों लोक घूम रहा है, तीनों जगत जो है, तो स्त्री और सोने सोना इसी में घूम रहा है। इति वचना तथा च कहा भी है संसारम ही विहीणा महिला रूवेण मंडियम पासम वज्जन्ति जान माणा अयान माणा विवज्जन्ति। अयान माणा विवज्जन्ति इसका अर्थ पंडित जी ने नहीं किया। पंडित जी ने तो पूरा भावार्थ लिखा है कैलाश सिंह जी ने। देखो खैर अपन कोशिश करते हैं। संसारम में ही विहीना, संसार में विहीना है ना ब्रह्मा ने महिला रूपेण मंडियम पासम, महिला रूपी एक जाल बिछा दिया है। संसार में ब्रह्मा ने महिला रूपी एक जाल बिछा के रखा है। वज्जंती जान माना, जो जानने वाले समझदार लोग हैं वो उससे बचते हैं। और अयान माणा विवज्जन्ति, अयान माणा ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। विभज्जंती जिनवाणी को प्रणाम करते हैं अपन, मतलब इतनी अपने पास भी शक्ति हो कि इसका सही भाव निकाल सकें। शब्दार्थ तो ऐसा है कि अजान माना, जो जानते नहीं हैं। वज्जंती जान माना, जानने वाले तो बचते हैं। अयान माणा विवज्जन्ति, देखो इसका रहस्य ऐसा कुछ भी हो सकता है कि अयान माणा नहीं जानने वाले विशेष रूप से बच सकते हैं, ऐसा अर्थ भी निकल सकता है। क्या है कि जो जानने वाले, जान लिया जिसने कि इस संसार में कुछ सार नहीं है और स्त्रियों के वशीभूत होने पर जीवन में शांति तो नहीं बल्कि जीवन पर्यंत अशांति ही अशांति बढ़ती रहती है, ऐसा जो जानने वाले लोग हैं वो एक न एक दिन विरक्त होकर के विवर्जंती घर परिवार का त्याग करके दीक्षा ले लेते हैं। और अयान माणा जो नहीं जानते, जिनको स्त्री संबंधी कोई अनुभव नहीं है, वो विवज्जंती विशेष रूप से बच जाते हैं। क्या मतलब इसका कि वो बाल ब्रह्मचारी अवस्था में ही छोड़ छाड़ करके निकल जाते हैं, ऐसा भी इसका भाव हो सकता है। और इसका अर्थ हम अगर आचार्य श्री होते तो फिर उनके चरणों में पूछते कि महाराज जी इसका क्या भाव है। अभी अगर कोई जाने वाला हो तो फिर वहां पर पूछ सकते हैं। देखते हैं ये लोग निकल गए ना, जो आए थे उस तरफ से MP वाले निकल गए होंगे। तो फिर आचार्य श्री के पास ये पूछवा सकते हैं इसका अर्थ। हाँ वो तो ठीक है, खैर ये तो कहीं से भी अपन वो करवा ले। अयान माणा विवज्जन्ति कमाल की गाथा है, लेकिन बहुत अद्भुत बात है इसमें। नहीं जानने वाले विशेष रूप से बचते हैं, ये उन जीवों की बात नहीं है जो फंसे हुए हैं, ये विशेष रूप से बचने वालों की बात है। और न जानते हुए भी बचना माने बहुत बड़ी बात हो गई। वो इसीलिए गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन ग्रंथ में बाल ब्रह्मचारी, मतलब जिसको कुमार ब्रह्मचारी है कहते हैं, उन तीर्थंकरों को नमस्कार किया विशेष। अभुक्त्वापि जगत सर्वम ये न त्यक्तम, जिन्होंने बिना भोगे संसार छोड़ दिया, उन कुमार ब्रह्मचारी तीर्थंकरों को मेरा नमस्कार। ऐसे आचार्य गुणभद्र स्वामी नमस्कार किया। वो अनजान थे मतलब उस चीज से, उस विषय से, लेकिन फिर भी उन्होंने विशेष रूप से उसका त्याग कर दिया। क्या होता है कि कई बार दूसरों के हाल देख करके भी विवेकी जीव संभल जाते हैं, और जो अविवेकी होते हैं वो खुद दलदल में फंस करके भी, खुद परेशान होकर के भी उस विषय को छोड़ नहीं पाते। वो तो व्यसन का ही हाल है। जो व्यसनों से बाहर है वो अंदर जाना चाहता है, और अंदर है वो बाहर निकलना चाहता है। और विषयों का भी यही हाल है, व्यसनों का यही हाल है और विषयों का भी यही हाल है। अयाण माणा विवज्जन्ति, अनजान लोग विशेष रूप से छोड़ते हैं। इति वचनात् सर्वजन स्त्रीणाम वशवर्ती भवती इत्यर्थ। इन वचनों से ये बात सिद्ध होती है कि सारी दुनिया स्त्रियों के वशीभूत हो जाती है। कश्चापि संसारिण जीवस्य मानः मदनेन कंदर्पेण न खंडित न दलित न चूर्णीकृत अपितु खंडित एव। और ऐसा कौन संसारी प्राणी है जिसके मान को काम ने नष्ट न किया हो, अर्थात सभी के काम मान को काम ने नष्ट कर दिया। उक्तम च कहा भी है, मत्तेव कुंभ दलने बुविसंति शूराः केचित् प्रचंड मृगराज वधेपि दक्षाः किन्तु ब्रवीमि बलिनाम पुरतः प्रसह्य कंदर्प दर्प दलने विरला मनुष्याः। बोले पागल हाथी के मस्तक को फाड़ने वाले शूरवीर इस धरती पर पैदा हुए हैं। पागल हाथी के मस्तक को फाड़ देने वाले शूरवीर इस धरती पर पैदा हुए हैं, और केचित कुछ ऐसे भी वीर हैं जो प्रचंड मृगराज वधे पी दक्षा, भयंकर मृगराज को मारने में कुशल है। किंतु बलिनाम पुरतः प्रसय्य ब्रवीमि, मैं उन बलवानों के सामने प्रसय्य माने जोर देकर के कहता हूं कि काम के अभिमान को नष्ट करने वाले विरला मनुष्य बहुत कम, इन्हें गिने लोग ही हैं। इतने बड़े बड़े शूरवीर हैं धरती पर, लेकिन काम को जीतने वाले निर्मल ब्रह्मचर्य के धारी जो हैं वो बहुत कम है। कह पुनः संसारी जीव इंद्रिय ही स्पर्शन रसन ग्रहण चक्षु श्रोत्र ही न जित न पराभूत अपितु जित एव। और कौन ऐसा संसारी है जो इंद्रियों से परास्त न हुआ हो, अर्थात सब पराजित हो गए हैं। मातंग मीन मधुकर पतंग कुरंगादय स्पर्शन रसन ग्रहण चक्षु श्रोत्रेण एकैक इंद्रियेण पराभूता दुखी कृता। मातंग यानी हाथी स्पर्शन इंद्रिय के कारण दुखी हुए हैं, फिर मीन यानी मछली रसना के कारण दुखी हुई है, मधुकर यानी भ्रमर भ्रमर घ्राणेन्द्रिय के कारण मरण को प्राप्त हुआ है, पतंग यानी जो दीपक की लौ में गिरने वाले जीव जंतु होते हैं वो चक्षुर इंद्रिय के कारण दुखी हुआ है, और कुरंग यानी हिरण संगीत की ध्वनि के कारण कर्णेन्द्रिय के कारण जाल में फंसा है। तो सभी इंद्रियों के वशीभूत हो गए, एक एक इंद्रियों के कारण दुखी हुए हैं, तथा कुरंग मातंग प्रतंग भृंग मीना हता पंच भिरेव पंच। ये पांच इंद्रियों के द्वारा, ये पांच प्रकार के प्राणी एक एक के द्वारा नष्ट हुए हैं। इति कब पुनः संसारी जीव कषाय क्रोधमान माया लोभी न संतप्त। और ऐसा कौन संसारी प्राणी जो क्रोधमान माया लोभ से संतप्त न हुआ हो, नरकादि दुख संतापम न नीत, नरकादिक के दुख और संताप को न प्राप्त कराया गया हो, अपितु संतप्त एव। सभी जीव कषायों के कारण नरकादिक दुर्गतियों को भोग चुके हैं। क्रोधेन द्वीपायन वशिष्ठादय, क्रोध के कारण द्वीपायन मुनि और वशिष्ठादि दुख को प्राप्त हुए। मानेन कौरवादय, मान के द्वारा कौरव आदि दुखी हुए हैं। माया मस्करी पूर्णादय, माया के कारण मस्करी पूर्ण आदि दुखी हुए हैं। लोभेन लोभ दत्त श्रेष्ठ्यादि दयाश्च दुखिता दुखी कृता। लोभ के कारण वो लुब्ध दत्त नाम का एक सेठ था, जिसके बारे में हमने थोड़ा सा एक झलक दी थी एक बार, कि वो अपने बच्चों को ठंड के मौसम में पड़ोस के बच्चों के साथ कुश्ती खेलने के लिए कहता था, कि उनके शरीर में जो तेल लगा है वो अपने यहाँ फोकट में मिल जाए। ऐसे बहुत सारी बातें थी उसकी, लुब्धदत्त सेठ की कथा, तो ये लोभ के कारण वो भी दुख को प्राप्त हुआ। क्रम से बड़ी सुंदर गाथाएं थी लोकानुप्रेक्षा के, आखिरी का ये प्रकरण चल रहा था। 278वीं गाथा के बाद वहाँ तक तो नयों का वर्णन कर दिया, फिर विरला निसुण ही तच्छम, विरला जानंत तच्छदो तच्छम, विरला भाव ही तच्छम, विरलाणम धारणा हो दी। 279 गाथा कि बिरले लोग यानि इन्हें गिने, तच्छम निसु नहीं, तत्व का उपदेश सुनते हैं, और बिरला इन्हें गिने लोग, बिरले लोग तच्छम तच्छदो जानंती, तत्व को यथार्थ रूप से जानते हैं, पहचानते हैं। बिरला भाव ही तच्छम, और बिरले जीव तत्व की भावना करते हैं, और विरलाणम धारणा होती, बिरले लोगों को उसकी धारणा बन पाती है। फिर उसके आगे की गाथा में कहा था कि तच्छम कही जमाणम, कहे जा रहे तत्व को जो ही जो मनुष्य निश्चल भावेण गिण दे, निश्चल भाव से ग्रहण करता है, तंची भावे दिशया और उसी को सदा भाता है, सो वी तच्छम वियाणी, वही तत्व को विशेष रूप से जान सकता है। फिर इसके आगे कहते हैं कि अब इतनी सारी बातें तो हुई लोकानुप्रेक्षा में, पर इस लोक में सबसे ज्यादा तो अनंत अनंत एकेंद्री जीव है, सूक्ष्म स्थावर। फिर क्रम से कम कम होते 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 फिर लोक के ही अंदर सबसे कम कौन से जीव हैं, उनकी चर्चा करते करते तत्वों की धारणा बनाने वाले बहुत कम हैं, यहाँ तक पहुँचे। फिर इसके बाद कहते हैं कि संसार में कुछ ऐसे फंदे हैं जहाँ मनुष्य मोह के कारण फंस जाता है, माने एकदम किनारे किनारे आते आते भी एकदम जहाज डूब जाता है, ये स्थिति होती है। और संसार में इतने सारे लोग हैं, पूरे लोक में कितने जीव हैं, इनमें सैनी पंचेंद्रीय जीवों पर अपन दृष्टि डाले तो ऐसा कौन होगा जो स्त्री जनों के वश में न हुआ हो, ऐसा कौन होगा कि जिसका मान काम के द्वारा खंडित न हुआ हो, ऐसा कौन है जो इंद्रियों से पराजित न हुआ हो, और ऐसा कौन है जो कषायों द्वारा संतप्त न हुआ हो। फिर इसमें कुछ उद्धरण गाथाएं भी दी हैं, जैसे भर्तृहरि जी का एक काव्य दिया है वसंत तिलका छंद में, मत्तेभ कुंभ दल ने भुवि संति शूरा, मदमत्त हाथी के मस्तक को फाड़ने वाले शूरवीर इस धरती पर हैं, केचित प्रचंड मृगराज वधेपि दक्षः, और कुछ अत्यंत कुपित, कुपित यानी क्रोध को प्राप्त हुए सिंह का भी वध कर डालते हैं, ऐसे भी कुछ मनुष्य हैं। किंतु बलिनाम पुरतः प्रसह्य भविमि, उन बलवंतों के सामने मैं जोर दे करके कहता हूं कि काम को पराजित करने वाले इन्हें गिने ही, सब काम के सामने परास्त हो जाते हैं, कामदेव को जीतने वाले बहुत कम हैं, इंद्रियों से भी सब पराभूत हो गए हैं। एक एक प्राणी का दृष्टांत दिया कि कौन सा प्राणी किस इंद्रिय के वशीभूत होकर संकटग्रस्त हो जाता है। और कौन सा प्राणी कषायों से पीड़ित नहीं हुआ, अर्थात सभी जीव कषायों के कारण दुर्गतियों को प्राप्त हो चुके हैं। क्रोधेन द्वीपायन वशिष्ठादय, क्रोध से द्वीपायन और वशिष्ठ मुनि, वशिष्ठ मुनि ही आगे चलकर कंस के पर्याय में उत्पन्न होते हैं, उनकी भी कथा आती है हरिवंश पुराण उत्तर पुराण में। मासोपवासी थे, आहार के लिए आए। राजा उग्रसेन की भावना थी कि मैं आहार दूं, तो उन्होंने फिर जनता को रोका कि आप लोग कोई मत खड़े होना पड़गाहन के लिए। ये सब चतुर्थ काल से चलता है, इस पंचम काल का ही नहीं है, चतुर्थ काल में भी ऐसा हुआ है। ऐसा श्रणिक राजा के जीव ने भी किया था, जब वो सुमित्र की पर्याय में थे। सुषेण और सुमित्र ऐसे दो जीव थे। अब परिणाम देखो क्या निकला उसका। एक महीने के उपवास के बाद जब वो आए तो फिर नगर में आग लग गई। आग लग गई तो फिर 32 अंतरायों में ग्राम दाह नाम का एक अंतराय होता है। अगर शहर में या नगर गांव में आग लग जाए तो फिर साधु आहार नहीं ग्रहण करते, लौट गए। फिर एक महीने का उपवास किया और दोबारा आया आहारचर्या के लिए। उस समय एक मदमत्त हाथी ने खंभा तोड़ दिया और नगर में उत्पात मचा दिया, तो राजा को उसका प्रबंध करना पड़ा और उस दिन भी उनका आहार नहीं हो सका। फिर तीसरी बार मासोपवास किया और अब की बार राजा उग्रसेन के यहाँ जरासंध के कुछ आदमी आ गए। जरासंध अर्धचक्रवर्ती रहे उस समय, श्री कृष्ण जी के समय की बात है ये। तो उस समय कृष्ण का जन्म नहीं हुआ था, तो उस समय जब उनके आदमी आ गए तो फिर राजा उग्रसेन फिर व्यस्त हो गए उसमें और मुनिराज को आहार नहीं मिल पाया। अब 3 महीने के उपवास के बाद जब आहार नहीं मिला तो फिर श्रावक लोगों में बहुत आकुलता हो गई। आधे से ज़्यादा लोग तो आंसू बहाने लगे और कुछ लोगों के मन में आक्रोश हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि अपना राजा कैसा दुष्ट है, बोले खुद भी नहीं देता और दूसरों को भी नहीं देने देता। ये बात जैसे ही वशिष्ठ मुनि के कानों में पड़ी तो फिर उनने ये समझा कि अच्छा, मेरे आहार में विघ्न डालने वाला राजा है। बस क्रोध का आवेश आ गया उनको और उन्होंने उसी समय सामने जो चट्टान थी उस पर एक ठोकर मारी अपने पैरों से, गिर पड़े नीचे, प्राणांत हो गया। और प्राणांत होने के बाद उसने यही संकल्प किया था कि इसका बदला लूंगा मैं राजा से। तो राजा की रानी के गर्भ में आ गए और गर्भ में आकर के जब जन्म हुआ उनका तो राजा देखने आया कि पुत्र का जन्म हुआ है। अपने बेटे को देखने की उत्कंठा से राजा जैसे ही सामने आया तो फिर उस बच्चे ने जैसे ही राजा को देखा तो दांत थे नहीं उसके, लेकिन ऐसे उसने अपने जबड़ों में अपने होठ को ऐसे दबा लिया और उसकी ये भ्रिकुटी ऐसे ऊपर चढ़ गई। निमित्त ज्ञानी ने बताया कि ये कोई आपका प्रबल शत्रु जन्म है। राजा को भी लगा कि इतना अभी एक दिन का बच्चा है और फिर इस तरीके से मेरे को देख रहा है। तो फिर यमुना नदी में एक कांसे की पेटी में उसको प्रवाहित कर दिया, नीचे एक चिट्ठी डाल दी, चला गया। अब वो मंदोदरी नाम की किसी कलारन को वो पेटी मिल गई और पेटी मिलने पर फिर उसने निकाला, पेटी को खोला तो उसमें एक सुंदर बालक था, तो उसको उसने पाल लिया। कांसे की पेटी से निकला इसलिए उसका नाम कंस रख दिया। संस्कृत भाषा में कंस बोलते हैं कांसे को। और फिर बहुत उत्पाती था वो बालक, वहाँ आसपास के लड़कों को रोज पीट पाट करके आता था शाम को घर, और माँ के पास रोज शिकायत आती थी कि इसने थप्पड़ मारे, भूसे मारे, लाते मारी, मेरे लड़के की हड्डी तोड़ दी, ऐसा वैसा। तो फिर अंत में परेशान होकर के माँ ने बोला कि अब अगर तेरी शिकायत आई तो फिर यहाँ मैं नहीं रखूँगी तेरे को। तो फिर शिकायत आई तो उसको घर से निकाल दिया। फिर ये आगे चल करके धीरे धीरे प्रगति करता करता पुण्य तो लेकर आया था, मुनि पर्याय में जो उनने मुनि अवस्था में पुण्य कमाया था तपस्या करके, पुण्य तो ज़बरदस्त था साथ में। और मुनि अवस्था में 6 वेंतर ने आकर, वेंतर देवियों ने आकर इनसे कहा था कि आप आदेश दीजिए, हम आपकी सब सेवा करने को तैयार हैं। तब इसने जवाब दिया था मुनि अवस्था में कि अभी मुझे तुमसे कोई काम नहीं है, जब ज़रूरत पड़े अगले जन्म मेरा मेरे पास आ जाना, बोले मैं जब बुलाऊँगा। तो उनने कहा कि ऐसा ही होगा। और फिर जब कंस मथुरा में जब उसको जानकारी मिलती है कि मैं उसका बेटा नहीं हूं मंदोदरी का। वो मंदोदरी आकर के बता देती है कि प्रसंग सब विस्तृत कथा है वैसे, पर ऐसा प्रसंग बना क्या कि जरासंध राजा ने अपनी पुत्री जीवद्यशा के लिए घोषणा की थी कि जो मेरे शत्रु राजा को परास्त करके मेरे सामने आ जाएगा उसको मैं अपनी पुत्री दूंगा और मथुरा का राज्य दूंगा, या फिर जो वो मुंह मांगा इनाम दूंगा बस। तो उस समय वसुदेव जो श्री कृष्ण के पिता थे, वसुदेव बहुत कुशल योद्धा थे, उन्होंने कंस को अपने साथ रखा और कंस देखा कि ये कंस प्रतिभाशाली लड़का है, तो उसको अपने साथ रख करके वो जिस राजा को हराना था उसको हरा दिया और उसको बंधन में बांध करके यहाँ ला दिया। लेकिन जब वो विवाह की बात आई तो वसुदेव सब विद्याओं का पारगामी और बहुत बड़ा विद्वान भी था, तो वसुदेव ने देखा मतलब स्त्री शास्त्र जो होता है, स्त्री के लक्षण वाला शास्त्र जो होता है, चार प्रकार की स्त्रियां होती है, पद्मिनी, हंसिनी, चित्रिणी, वंशिनी। तो उन स्त्रियों में से इसने देखा कि ये जो राजकुमारी है इसके सारे लक्षण मेरे लिए संतुष्टि कारक नहीं है, मैं इससे विवाह नहीं कर सकता। और जब जरासंध कहने लगा वसुदेव से कि भाई तुमने जीता है मेरे शत्रु को, तो मेरे वचनानुसार तुम्हें मैं अपनी पुत्री देता हूँ, तब फिर वसुदेव ने बहाना कर दिया, बोले कि मैंने जीता जरूर है लेकिन इसको बांधने वाला ये मेरा विद्यार्थी कंस, कंस ने बांधा है, इसलिए कंस को ही दी जाए आपकी राजकुमारी। तो फिर जरासंध ने बोला कि ये कंस कौन है तुम्हारा, इसके माता पिता कौन है? वसुदेव बोले कि मेरे को नहीं पता। तो फिर वो अपने सेवकों से पता लगवाता है, कंस से पूछता है कौन है तेरी माँ, तो बताता है कि वो अमुक यमुना तट पर एक रहती है मेरी माँ, मंदोदरी उनका नाम, तो वहाँ पर भेजते हैं। मंदोदरी के पास जैसे ही राजा के आदमी आते हैं, उसको लगता है कि लड़के को मैंने घर से निकाल दिया, उसने जाकर राजा के यहाँ कोई उत्पात किया होगा, अब मेरी फांसी होगी बोले। तो फिर वो अपनी जान बचाने के लिए वो पेटी लेकर के साथ में जाती है। और फिर जब जरासंध पूछता है ये तुम्हारा बेटा है, तो फिर बोलती है कि जो भी इससे गलती हो गई मैं तो माफी मांगती हूँ। राजा सोचता है कि इससे तो कोई गलती हुई नहीं, इसने तो अच्छा काम किया है। तो बोले कि तुम डर क्यों रही हो? बोले कि ये बहुत खुरापाती था इसलिए मैंने घर से निकाल दिया था बोले इसको। तो बोले कि नहीं, अभी तो इसने बहुत शूरवीरता का काम किया, बताओ इसका कैसा क्या परिचय है, तुम कौन से वंश की हो, और सारी बातें पूछी। बोले कि मेरा बेटा है ही नहीं। कौन से ऐसे सुनता है कि अच्छा मैं इसका बेटा नहीं हूँ, ध्यान से सुनता है। बोले कि इसकी माँ तो ये पेटी है, बोले यही देखो आप इसको। पेटी देखता तो उसके अंदर छानबीन करता एक पत्र निकलता है, मथुरा के राजा उग्रसेन का ये पुत्र है और किसी कारणवश इसको छोड़ना पड़ा है। अब जैसे उग्रसेन नाम सुनता है तो फिर इसके अंदर जो भाव थे उग्र हो जाते, पूर्व जन्म का वैर था। और उसके बाद फिर जब ये विवाह स्वीकार कर लेता है, जीवित यशा के साथ इसकी शादी हो जाती है, और फिर राजा बोलता है कि मुंह मांग गए इनाम, तुम क्या चाहते हो? बोले कि मथुरा का राज्य चाहता हूँ। और तब फिर कंस जाकर मथुरा का राजा बनता है, उग्रसेन को पिंजरे में लटका देता है, मुख्य द्वार पर, मथुरा के मुख्य द्वार पर उग्रसेन राजा को, अपने पिता को पिंजरे में लटका देता है। और अंत में फिर आगे चलकर फिर वो कथा जो लंबी चलती है, कृष्ण आकर के कंस को परास्त करते हैं, नष्ट करते हैं, और फिर उग्रसेन को वहां से मुक्त करते हैं। इसी लंबी कथा, बहुत लंबी कथा है, हरिवंश पुराण पढ़ने लायक। तो क्या कह रहे हैं, क्रोध के कारण द्वीपायन और वशिष्ठ आदि नष्ट हुए। कंस बनने के बाद फिर दुर्गति होती है उसकी, जब कृष्ण उसको मारते हैं तो नरकगामी होता है कंस, कंस को सदगति की प्राप्ति नहीं हुई है। फिर मानेन कौरवाद, अभिमान के कारण कौरवाद, दुर्योधन वगैरह बहुत अभिमानी लोग थे, उसके कारण वो नष्ट हो गया। और माया मस्करी पूर्ण आदय, माया के कारण मस्करी पूर्ण, ये भी कोई पौराणिक पात्र होना चाहिए, हमने इनकी कथा अभी पढ़ी नहीं है। वो नष्ट हुए हैं। फिर लोभिन लोभ दत्त शिष्ट आदय दुखी कृता, लोभ के कारण लोभ दत्त श्रेष्ठी आदि बताई थी ना कथा, लुब्ध दत्त सेठ की, छठे नरक में जाता है, भयानक कथा भी, हमने तो थोड़ा सा उसकी झलक दिखाई थी आपको कि कैसा लोभी था वो, कंजूस कितना था, लेकिन पूरी कथा सुनो तो फिर भयानक कथा है। उपासक अध्ययन ग्रंथ में मिलती है, आपके यहाँ है कि नहीं उपासक अध्ययन? अब देखो, अब अगर भविष्य में आप लोग सरस्वती भंडार बनाते हो तो फिर हमने एक सूची दी है यहाँ पर एक सज्जन को, तो उस सूची में पूरे हिंदुस्तान की लिस्ट है कहाँ कौन से ग्रंथ उपलब्ध है, तो वहाँ से बुलवा करके एक बहुत सुंदर सरस्वती भंडार का आप यहाँ पर स्थापन कर सकते हैं, तो बहुत धूमधाम के साथ वो कार्य हो सकता है। और स्वाध्याय भवन जो शब्द चला है अभी वर्तमान शताब्दी में या पिछली शताब्दी से, वो प्राचीन कहीं भी जैन संस्कृति में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये ठीक है कि ऐसे सरस्वती भंडार तो रहे पुराने, लेकिन स्वाध्याय के लिए मंदिर के अतिरिक्त कोई अलग से भवन बनाने की कोई परंपरा जैन संस्कृति में अभी इतिहास में मिलती नहीं है कि अलग से स्वाध्याय करने के लिए उनका कोई विशेष स्थान होता हो, ऐसी पद्धति मिलती नहीं, क्योंकि जिन मंदिर में ही पूरे नौ देवता हैं, जिन मंदिर जो होता है मंदिर जी में ही पूरे नौ देवता रहते हैं, फिर भी सरस्वती भंडार के लिए कुछ अलग स्थान बनाए जाते हैं विशेष रूप से, बहुत सारे ग्रंथ जब बुलाते हैं, और बहुत अच्छा भंडार बन सकता है, उस सूची को ही देख करके आपको अंदर ही अंदर खुशी होगी, इतने सारे ग्रंथ अलग अलग ग्रंथमालाओं से प्रकाशित हैं, तो एक बहुत सुंदर भंडार बन सकता है, और फिर उसमें यहाँ के आपके जो सुधी श्रावक लोग हैं वो अपनी तरफ से एक एक अलमारी का भी वो कर सकते हैं योगदान, और उसमें जो ग्रंथ बुलाए जा रहे हैं तो उसमें भी योगदान दे सकते हैं, और भव्य एक सरस्वती भंडार बन सकता है, जिसमें कुछ उदाहरण हम आपको दे दें कि सोलापुर से आप धवला का जो नया संस्करण है पूरी 16 किताब बुला सकते हैं, षटखंड आगम के पूरे 16 भाग सोलापुर से, 16 16 नाम आसानी से याद रहे, सोलापुर जानते होंगे आप, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पर है, महाराष्ट्र में है वैसे सोलापुर, वहाँ पूरे 16 भाग नए प्रकाशित हुए हैं अभी कुछ ही वर्षों पहले, वो उसमें सूची में पूरे दिए हुए हैं। और फिर मथुरा से 84 मथुरा नाम का स्थान है, वहाँ से कसाय पहाड़ के पूरे 16 भाग बुला सकते हैं, लेकिन वहाँ किसी को जाकर लाना पड़ेगा, क्योंकि वो पार्सल करके इसलिए नहीं भेजते कि वो सिद्धांत ग्रंथों के अभिनय न हो, लेकिन वो देते ज़रूर हैं, अगर आप विनयपूर्वक जा कर के ले आएँ तो फिर वो देते हैं। तो कसाय पहाड़ के पूरा 16 भाग जय धवला मथुरा 84 से मिल सकता है, 84 नाम का एक स्थान है वहाँ पर मथुरा, वहाँ से उपलब्ध होता है। और महाबंध जिसको महाधवला कहते हैं वो भारतीय ज्ञानपीठ से मिल सकती है, 7 पुस्तकें हैं उसकी, 7 भाग हैं, वो 7 खंड मिल सकते हैं आपको। तो इस प्रकार पूरे ये तीनों सिद्धांत ग्रंथ हैं, मूल सिद्धांत ग्रंथ द्रव्यानुयोग, इसको पंडित टोडरमल जी ने करणानुयोग कहा तो उनका अनुकरण करते हुए आज के हर विद्वान करणानुयोग ही कहने लग गए हैं, लेकिन ये ग्रंथ करणानुयोग ग्रंथ नहीं है, ये सिद्धांत ग्रंथ है, जीव और कर्म सिद्धांत का विस्तृत वर्णन इनमें मिलता है, और ये ग्रंथ द्रव्यानुयोग हैं, इनको आगम कहते हैं, ये आगम ग्रंथ 3 प्रकार के हैं, जयधवला जयधवला और महाधवला। और फिर दूसरे पंच परमागम में आचार्य कुंदकुन स्वामी के अध्यात्म ग्रंथ होते हैं, तो उन अध्यात्म ग्रंथों के अंतर्गत फिर बहुत सारे ऐसे अलग अलग अलमारियां बना सकते हैं, हम आपको ये बता देंगे, उसमें सूची में ऐसा विभाग नहीं किया उन्होंने कौन सा अनुयोग कैसा क्या, अपन अनुयोगों का विभाग करके बहुत व्यवस्थित, कम से कम चार अलमारियां तो आराम से बनती है, कम से कम चार, चार अनुयोग है ना अपने, तो चार अनुयोगों की चार अलमारियां तो बिल्कुल गारंटीड बन जाती है आसानी से। बड़ी बड़ी अलमारियां रख सकते हैं आप, हर जगह से संस्करण बुलाइए आप, नियमसार है ज्ञानमती माता जी द्वारा अनुदित, और फिर अभी एक और नया प्रकाशन उसकी तैयारी चल रही है पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य द्वारा, उसका अनुवाद हुआ था बहुत पहले। फिर अष्टपाहुड़ है, अष्टपाहुड़ तो पंडित पन्नालाल जी के टीका सहित अनुवाद के साथ प्रकाशित है, वो भी मिल सकता है। फिर पंचपरमागम में ये तो दो हो गए, नियमसार अष्टपाहुड़, और इनके अतिरिक्त समयसार, प्रवचनसार और पंचास्तिका है, ये तीनों आपको आगास से मिल सकते हैं। और अगर और विस्तृत टीका चाहिए हो, अमृतचंद्र स्वामी की टीका चाहिए हो और टीका पर और व्याख्या चाहिए हो, तो फिर पंडित मोतीचंद कोठारी द्वारा जो व्याख्या की गई है उसके साथ आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। दो खंड है उसके समय सार के, वो कारण तारंगा में बहुत सारी प्रतियां मोटे मोटे दो भाग, तो वो आपको उपलब्ध हो सकती है कहीं से समय सार। और फिर जयसेन स्वामी की टीका अगर चाहिए हो तो फिर ज्ञान सागर महाराज जी ने एक हिंदी अनुवाद किया हुआ है, और फिर एक वीर सागर महाराज जी ने हिंदी अनुवाद किया है। वीर सागर महाराज जी का जो अनुवाद है उस अनुवाद में थोड़ा सा एक अलग धारा है, और ज्ञान सागर महाराज जी का जो अनुवाद है वो अलग प्रकार का अनुवाद है। तो ऐसे दो अनुवाद हैं जयसेन स्वामी की टीका संबंधी, और दोनों टीकाओं का अनुवाद अगर आपको चाहिए हो तो वो ज्ञानमती माता जी द्वारा किया गया है, हस्तिनापुर से मिल सकता है। दोनों टीकाओं का एक साथ अनुवाद आपको एक साथ छपा हुआ मिलेगा उसमें। और इस प्रकार और बहुत सारी जानकारी, प्रवचन सार ग्रंथ की टीकाएं एक आगाज से तो मिल ही जाएगी, फिर दूसरी एक रतनचंद मुख्तार द्वारा अनुवाद की गई, दोनों टीकाओं का अनुवाद उसमें प्रवचन सार की, वो मिल सकती है। पंचास्तिकाए के भी दोनों टीकाओं का अनुवाद रतनचंद मुख्तार ने किया हुआ है, तो वो भी आपको मिल सकता है। विमल सागर महाराज जी की स्यादवाद विद्वत परिषद, यही नाम है, अखिल भारतीय स्यादवाद विद्वत परिषद ऐसा कुछ नाम, तो वहां से उपलब्ध हो जाएगा। इस तरह इन ग्रंथों का अगर आपकी रुचि हो तो फिर आप ये सारी जानकारी, अभी जब तक अपना चल रहा है कार्यक्रम यहाँ पर, वो आप ले सकते हैं और फिर व्यवस्थित तो उसको बना सकते हैं, फिर अलमारियों में अलग अलग वो कर सकते हैं। और ये तो मतलब देवशास्त्र गुरु की सेवा का कार्य है, सब लोग इसमें अपना हाथ बटाकर लाभान्वित हो सकते हैं। ये तो FD है, FD यानी जानते हैं फिक्स डिपॉजिट। तो इस प्रकार एक भव्य सरस्वती भंडार तैयार किया जा सकता है, और पूरे हिंदुस्तान की सूची हमने दी हुई है। अब इसके बाद कहते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं इस लोक में जो इनसे बचे हुए हैं, किन से, तो ये स्त्रीजनों से, काम से, इंद्रियों से और कषायों से। वो कौन है तो आचार्य अगली गाथा कह रहे हैं, अथाभ्यंतर बाह्य परिग्रह से परित्याग महात्म्यम विशदयति सोर्णवसो इति जनी सोर्ण जियो इंदिये ही मोहिन जोर्णय गिण्न दिगंथम अभ्यंतर बाहिरं सर्वम। बोले वो व्यक्ति स्त्रियों के वशीभूत नहीं होता, वो व्यक्ति इंद्रियों से पराजित नहीं होता, और वो व्यक्ति मोह द्वारा जीता नहीं जा सकता जो अंतरंग और बहिरंग सब प्रकार के परिग्रहों को ग्रहण नहीं करता। यानी जो परिग्रह से मुक्त होता है वो इन सब से बच जाता है। कितनी सुंदर बात है, यानी सब पापों की जड़ परिग्रह है। परिग्रह के कारण मन मोहित होता है, परिग्रह के कारण विषयों की तरफ भागता है, परिग्रहों के कारण ही कषायों में उलझता है, परिग्रह के कारण ही दुर्गति का पात्र बनता है। परिग्रहों के भेदों का वर्णन तो फिर सभी ग्रंथों में मिल जाता है। बाह्य परिग्रह 10 प्रकार के होते हैं, जमीन जायदाद आदि, और अंतरंग परिग्रह अपने कषाय आदि हैं। तो इन परिग्रहों को जो छोड़ देता है वो इन सब अनिष्ट के वश में कभी नहीं होता। इस प्रकार लोकानुप्रेक्षा को अब यहाँ पर अंतिम गाथा से उपसंहृत करते हुए आगे कह रहे हैं, एवं लोय सहावम जो झायदि ओसमेक सब भावो सो खविय कम पुंजम तिलोय सिहामणि होदी। तिल्लोय बोलना, तिल्लोय सिहामणि होदी। बहुत सुंदर गाथा। इसमें अच्छा पाठ दूसरा है, देख लेते हैं। हाँ वही पाठ भेद हो गया ना, मतलब इसमें तिल्लोय पाठ है आपके उस प्रति में, तस्से विधि है, एक ही बात है, अर्थ तो एक ही निकलेगा। चलो, एवं लोय साहब, इस तरह इतने विस्तृत लोक के स्वभाव को जो वो समय एक सद्भाव, एक शांति का सद्भाव अपने भीतर बनाकर, यानी सिर्फ शांति को अपने अंदर अस्तित्व देकर जो झायदी, जो ध्यान करता है लोक का और चिंतन करता है, मनन करता है कि लोक ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, सो खविय कम्ब पुंजम, वो कर्मों के समूह का क्षपण करके तिल्लोय सिहामणि होदी, तीन लोक का शिखामणि, अर्थात शिखा का अर्थ चोटी होता है और वहाँ का मणि यानी सिद्ध परमेष्ठी। तीन लोक के मणि स्वरूप कौन है, शिखामणि कौन है, सिद्ध भगवान, क्योंकि लोकाग्र पर वही विराजमान है। तो अर्थात तत्सैव सिहामणि बोलो तो उसी लोक का शिखामणि, एक ही अर्थ है, तिल्लो या तीन लोकों का शिखामणि अथवा उस लोक का शिखामणि, बात एक ही है। तो लोक के शिखर पर विराजमान हो जाता है, सिद्ध पद को प्राप्त कर लेता है। इति षड भाषा कवि चक्रवर्ती त्रैविद्य विद्येश्वर भट्टारक श्री शुभचंद्र देव विरचितायाम लोकानुप्रेक्षा टीकायाम लोकानुप्रेक्षा प्रतिपादको दशमोधिकार समाप्तः। ये 10वां अध्याय समाप्त हुआ है, कार्तिकीय अनुप्रेक्षा के 12 अध्यायों में से 10 अध्याय आज के दिन यहाँ पर पूर्ण हो गए हैं। अब बचे 2 अध्याय, तो 11वां अध्याय ...284 से 301 गाथाओं पर्यंत चलेगा, और उसके बाद बाकी जो बचेगा वो अंतिम धर्मानुप्रेक्षा को लेकर के है, जो सबसे ज्यादा श्रोताओं के लिए महत्वपूर्ण है। ये तो कभी मन थोड़ा सा प्रमादी हो जाता है या फिर ज्यादा विषय कक्षाओं में भटकने लगता है तो फिर 11वां अध्याय पढ़ लो, और बाकी 12वां जो अध्याय है वो तो समझ लो कि अपने जीवन को संवारने वाला अध्याय है, क्योंकि उसमें मुनि धर्म और गृहस्थ धर्म, श्रावक धर्म दोनों का विशद वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन है। और फिर टीका में तो अन्य ग्रंथों से भी रेफरेंस गाथा है, मूल गाथा से संबंध रखने वाली और उद्धरण गाथाएं संग्रहित हैं। जैसे मूल में यहाँ जो कोई चर्चा होगी तो रत्नकरण में क्या कहा है वो भी यहाँ बता देंगे, वसुनंदी श्रावकाचार में क्या कहा है वो भी बता देंगे, अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में क्या कहा वो भी इसमें संग्रहित कर लेंगे। तो एक साथ अपने को ऐसा अमृत लाभ इस अंतिम धर्मानुप्रेक्षा में मिलने वाला है, देखो आगे देखते हैं।